आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
जॉनसन पार्टनर्स की नई रिसर्च के अनुसार ऑस्ट्रेलिया की टॉप 100 कंपनियों में सिर्फ 5 ऐसी हैं जिनके सीईओ एशियाई मूल से आते हैं। तेजी से बढ़ती एशियाई आबादी के बावजूद कॉरपोरेट ऑस्ट्रेलिया के ऊंचे पदों पर एशियाई मूल के लोगों का कम प्रतिनिधित्व एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या वजह है कि नेतृत्व की कुर्सियों तक पहुंचने में सांस्कृतिक विविधता यानी कल्चरल डायवर्सिटी अब भी इतनी पीछे है? क्या बाधाएं हैं जो एशियाई पेशेवरों को एग्जीक्यूटिव लेवल तक पहुंचने से रोकती है और कॉरपोरेट ऑस्ट्रेलिया में असली अर्थपूर्ण बदलाव कैसे दिख सकता है? हमसे बात कर रहे हैं दो एशियाई मूल के सीईओ जो अपने अनुभवों से ये तस्वीर और भी स्पष्ट कर रहे हैं। साथ ही सुनेंगे एक वर्कप्लेस डाइवर्सिटी ऑफिसर को जो बताएंगे कि सिस्टम में क्या अटकलें हैं। ऑस्ट्रेलिया इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सीईओ निकिता चोपड़ा कहती हैं कि लोगों के मन में जमे रूढ़िगत विचारों को तोड़ना अभी भी एक चुनौती है।
एवरीवन थिंक्स कि हम इमिग्रेंट्स, हम आए हैं, हमारी जर्नी है, हम बहुत स्टक हैं, हम बहुत हम मेहनती हैं पर हम लीडर नहीं हैं। सो इस बाधा में जब आपकी पिक्चर होती है दैट इवन स्टार्टिंग में जब मैं आई थी तो अगर आप अच्छी इंग्लिश बोल रहे हो तो वो भी लोग सरप्राइज हो जाते थे कि ओह योर इंग्लिश इज वेरी गुड। सो मुझे ये चीजें बहुत ही अटपटी लगी कि ये नॉर्मल है, हम जिस कल्चर या हम जिस बैकग्राउंड या बहुत 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 इंडियंस की इंग्लिश बहुत ही अच्छी है बिकॉज स्कूलिंग बहुत अच्छी हुई है, तो किसी का ये पिक्चराइज करना भी गलत साउंड करता था कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट एक्चुअली यू रियलाइज कि आपकी पिक्चर रिप्रेजेंट करने के लिए हम उस पोजिशंस पे पहुंचे ही नहीं है। हमने अपनी लीडरशिप, हमने अपना इंटेलेक्चुअल माइंडसेट, हमने अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो वो लैडर्स पे चढ़ना चाहेंगे टू रीच द जेनिथ। यूजुअली हमारे लोग बहुत ही नजदीक जाके पोजीशंस के छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं क्योंकि बहुत इमोशनल डिस्ट्रेस है। इजी नहीं है फाइट करना फॉर सच पोजीशंस क्योंकि आपको अपनी स्किल्स के साथ साथ अपना टाइम डेडिकेट करना पड़ता है, अपने आप को प्रूव करना पड़ता है हर एक मीटिंग में, जो कि मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है बिकॉज आपके पास इतना टाइम नहीं होता है। हम फैमिली में रहकर वी हैव अ लॉट ऑफ कमिटमेंट्स, तो वो निकल कर आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है, खुद बुक्स पढ़नी पड़ती है, रिसर्च करनी पड़ती है चीज़ों की, क्योंकि जब आप फिर मीटिंग्स में जाते हो तो आपको वो पॉइंट्स प्रूव करने पड़ते हैं कि यस यू नो आई डिजर्व इट। एंड आई थिंक वो एक बैरियर है, अभी भी है एंड आई स्टिल फेस इट।
निकिता जी, ये बताइए कि कभी इस तरह के कॉर्पोरेट माहौल में फिट होने के लिए आपने अपनी सांस्कृतिक पहचान यानी कि कल्चरल बैकग्राउंड को इसके कुछ पहलू बदलने की कोशिश करी या छिपाना पड़ा या अपने आपको कुछ मोल्ड करना पड़ा?
मैं बहुत 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 प्राउड रही हूँ बीइंग एन इंडियन, बीइंग कमिंग फ्रॉम पंजाब, है ना, कड़ा पहनना या फिर जिस तरीके से हम बात करते हैं, बिकॉज कोई भी कल्चर के हो आप अपने कल्चर के साथ साथ अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप अपनी अपब्रिंगिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हो, वो गलत कैसे हो सकती है? जैसे कि हमारी बोली, हमारी पहचान, हमारा खाना पीना, अगर हम उसे प्राउड लेकर चलें तो आई थिंक कि वो प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ती है कि हाउ यू नो डिजर्विंग वी आर। एंड जो संस्कृति हमारी एक पहचान है उसको अगर हम कैरी करेंगे विच हैज प्रूवन कि अब जो ऑस्ट्रेलिया है फॉर एग्जाम्पल, उसके साथ जो इंडियन रिलेशंस हैं या इंडिया टाइप्स हैं या बायोलैट्रल ट्रेड पे इतना काम हो रहा है ऑफ द विजन कि 2030 में इंडियन ऑस्ट्रेलिया का रिलेशनशिप इज गोना बूम, सो वो चीज वो एक सांस्कृतिक पहचान करके ही है. वन ऑफ द इन्वॉल्वमेंट इज कल्चर आइडेंटिटी, एंड जिसके लिए अगर हम प्राउड हैं तो आई थिंक यू नो विल डेफिनेटली रीच द मैक्सिमम ऑफ पोजिशंस.
डायवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया के सीईओ स्टीवन एस्निकर कहते हैं कि एशियाई मूल के लोगों का प्रभावशाली नेटवर्क तक पहुंच न होना ऑस्ट्रेलियाई कार्यबल में सीईओ पद तक पहुंचने में आने वाली कई बाधाओं में से एक है.
I think it's actually a combination of a number of things. The low number of Asian Australian CEOs in those top companies is due to cultural biases predominantly and a lack of access to those influential networks. And there's really a disconnect between westernized leadership models and the experiences of Asian Australians. So we look at it as being that meaningful cultural diversity requires moving beyond that tokenism to actually create an inclusive environment where diverse perspectives are valued and actually lead to genuine change. And we've not had that yet in Australia.
And you mentioned about the westernized leadership program. Can you throw a bit of light on that?
See, with a westernized leadership model, we often find that organizations don't recognize or value leadership styles that are different from the dominant Western model. And that actually hinders a lot of career progression, particularly for people who don't fit that mold. And that in turn means it leads to a lack of awareness or access to networks. Mm. It means a lack of mentoring and sponsorship opportunities, and it limits that advancement opportunity. Mm. But it also creates an exclusion from influential social and professional networks because they're just not able to break into that next area.
And what do you think are the most common barriers that Asian professionals face when they're trying to move from, let's say, a mid-level to an executive leadership role?
Well, there's a bit of a glass ceiling in terms of, for many cultures now, not just Asian cultures, but what we often see is that because this whole concept of new organisations, so and I use Australia as a great example, it's still one of the least ethnically diverse nations in the world in terms of its ranking. And what we've got now is a situation where we suddenly need to bring in a whole heap of new talent from different countries. And what our potential support ratio, which is the PSR, that's the number of people between 20 and 64 years of age versus people who are 65 and over, is dropping significantly. We're now on par with Canada and US and some parts of Europe where they're in low levels of 3. And that means we don't have enough younger person population to support and to work and to be part of our community compared to the older population, which is exploding in Australia. But what that also brings is a challenge and a change for organisations, because we're now bringing in, you know, millions of new people over the next few years, literally, to Australia to help revive the economy and to find people who can work in these organisations like the top 100 that you're talking about. But the problem is that those organisations are still stacked with people from very different generational backgrounds, predominantly white, and they don't value those diverse perspectives. But what we do know is that by 2050, which is only something like 1,200 weekends away, the bulk of the Australian population, that means like 52% of them, will be Asian-born or Asian by descent. So we're going to see a big shift and change because, you know, this mix of this multicultural diversity that's now becoming part of Australia's new society means that we will see huge changes, particularly in leadership. And that's what I'm really looking forward to. But we're not there yet. It needs to be driven from a systemic area, so boards and executives, and train them on cultural bias and stereotyping, because we still see Asian Australians in particular still reporting and experiencing a high level of bias and racism in the workplace. And that's just lack of leadership capital from my perspective. And you know, Asian Australians, you know, that talent needs to be brought through the business and mentored and sponsored and given access to grow and develop. And we've just not done that.
Yeah. So you did mention, Stephen, that 1,200 weeks from now, leadership is going to look very different from what today it looks like. Now, what changes one can bring at the grassroots level? So what does meaningful and measurable cultural diversity looks like to you?
Look, it's currently a very uneven playing field, and the research tells us that, you know, it's still showing a very significant percentage of Asian Australians reporting and experiencing discrimination in the workplace. But that change will look differently because we've got to start looking at the systemic areas and actively dismantling the biases in their hiring and their promotion and their evaluation processes, and to develop leadership programs that actually recognize and support diverse talent.
Right.
So the big shift is going to be in the systems, and I mean even at the top four or the top five Shrek firms, those executive search firms in particular, because a lot of these big firms are using AI to screen and to cut, and unfortunately a lot of the biases are actually programmed into the system. Not to mention that the people who are choosing our new leaders for these organizations are inherently quite biased themselves. They've never been trained, they've never been challenged, and unfortunately they tend to really bring that bias into the equation. And I don't think that many of the organizations that engage them understand how bad it can actually be at that level, particularly in those firms. So I'd be calling out those firms in particular to change their approach and think about how they're picking people that are going to represent those companies in the future. But then that's the other part of it, is the boards. The boards in Australia are still very much focusing on, you know, race, religion, age, gender and sexuality in terms of those elements. Don't forget now it's a person-centric approach. I mean, it's the right person for the role, the right skills, background, experience. But that's where the cultural bias is still the biggest factor.
Right.
It's still the biggest thing affecting Asian Australians. And boards need to be re-educated on this stuff. They tend to gravitate to the people who look like them, who are like them. And unfortunately, that doesn't leave opportunities for Asian Australians.
सिडनी के रहने वाले एआई प्रोडक्ट और सर्विस कंपनी ओक्यूलर के सीईओ अभिषेक वोरा का मानना है कि कुछ साल पहले एशियाई पेशेवर तकनीकी या विशेषज्ञ भूमिकाओं में सीमित रहते थे, लेकिन अब ये रुझान बदल रहा है।
इसकी वजह ये है कि नॉर्मली यहाँ पे जो इंडियन स्टूडेंट्स आने लगे, ये थे मेनली 90s, मेनली 2000 में। सो ये सिर्फ लास्ट सिर्फ 25 साल 30 साल की हिस्ट्री है, और उसमें भी मैंने देखा है कि काफ़ी उन्नति कर रहे हैं ये, और बस थोड़ा टाइम का हिसाब है मेरे ख्याल से, और कुछ नहीं है। क्योंकि जो हमारी जो सेकेंड जनरेशन है, जैसे मैं देखूं कि मेरे जो बच्चे हैं जो स्कूल में हैं वो सारे काफ़ी डाइवर्स है, तो उस वजह से आई थिंक थोड़ा अगर हम और टाइम दें इसमें ये बढ़ेगा जनरल मैनेजमेंट की तरफ में।
कुछ लोगों का मानना है कि ऑस्ट्रेलिया के कॉर्पोरेट सेक्टर में कई उच्च पदों तक पहुंच आज भी अनौपचारिक नेटवर्क्स और सीनियर लीडरशिप के सर्कल्स पर आधारित होती है। बहुत जगह बैम्बू सीलिंग जैसा एक असर देखा जाता है, जिसके तहत टेक्निकल रोल्स में ही एशियंस को काबिल माना जाता है, लेकिन लीडरशिप या स्ट्रेटेजिक रोल्स के लिए उपयुक्त नहीं समझा जाता है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हम जरूर जानना चाहेंगे। हमें मैसेज कीजिए 0439-799-767। ये अंश आपके लिए प्रस्तुत किया SBS हिंदी से इति दीवान ने।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।